السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے جمعے کو ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم پر زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک پائیدار لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں دنیا کو پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری جانب افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک اور امن کی ضمانت ہے، اور ان کے بقول افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگا، اور خطے میں امن و امان اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے سمرقند میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر بھارت کو مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ چین اگلے سال ایس سی او سمٹ کے انعقاد میں بھارت کی مدد کرے گا۔ لداخ میں سن 2020 میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی پیدا ہونے کے بعد دونوں رہنما پہلی بار آمنے سامنے ہیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ ایس سی او کے رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد کی حمایت کرتے ہیں۔ بقول ان کے، کورونا وبا اور یوکرین بحران سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں توانائی اور غذا کا سنگین بحران پیدا ہوا ہے۔ ایس سی او کو متنوع اور لچکدار سپلائی چین پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی اور ٹرانزٹ تک رسائی کی ضرورت ہے۔ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے دو طرفہ مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے ملک میں جاری سیاسی بے یقینی کے خاتمے کے لیے مفاہمت کی پیشکش کی ہے۔ دنیا ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان امور طے کرنے کے لیے ایوان صدر کے دروازے کھلے ہیں۔ صدر کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور سیلاب کے باعث معاشی اور انتظامی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ صدر کی مفاہمت کی اس پیشکش کو حکومت کی جانب سے حزب اختلاف کے ساتھ مذاکرات کی خواہش کے جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ اس ہفتے افغانستان سے ماورا عدالت پھانسیوں کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں جو طالبان کی طرف سے بین الاقوامی انسانی قوانین کی واضح خلاف ورزی کی پریشان کن یاد دہانی ہیں۔ حراست میں لیے گئے افراد کا قتل جنگی جرم ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ ان ہلاکتوں کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور ذمہ داروں کو ایک آزاد عدالت کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ادارے نے ایک ابتدائی جائزہ لیا، اور اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ پنشیر میں طالبان کی طرف سے قومی مزاحمتی محاذ کے ارکان کی ماورائے عدالت پھانسیوں کی یہ نئی ویڈیوز ہیں۔ طالبان کی جانب سے ان بیانات پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ طالبان نے افغانستان بینک کے اثاثوں سے متعلق جمعرات کو دیر گئے جاری ہونے والے ایک نئے بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر افغانوں کے جائز مطالبات پر غور کیے بغیر بینک ذخائر تقسیم کیے گئے تو طالبان تمام افراد، اداروں اور ان کی سرگرمیوں پر جرمانے عائد کرنے اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس میں غیر قانونی منصوبے کو سہولت فراہم کرنے والی کمپنیاں شامل ہیں جو انسانی ہمدردی اور دیگر مقاصد کے لیے دا افغانستان بینک کے ذخائر کا غلط استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ بیان میں امریکہ پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اثاثوں کو غیر منجمد کرے، اور افغان عوام کے مالیاتی نظام پر عائد پابندیاں ختم کرے تاکہ وہ بینکنگ سسٹم تک رسائی حاصل کر سکیں और अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकें। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा था कि अमरीकी महकमा खारजा और महकमा खजाना ने सदर बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अफगान फंड के क्याम का ऐलान किया है, जिसमें 3.5 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान के लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने का मुतालबा किया गया है। अमरीका के खसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने एक ट्वीट में कहा कि महकमा खारजा और महकमा खजाना ने अफगान फंड का जो ऐलान किया है अफगानिस्तान के लोगों के फायदे के लिए 3.5 बिलियन डॉलर की हिफाजत करेगा। इन असासों से अफगानिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचेगा और असासों के इस्तेमाल से मुतालिक उनकी मजबूत राय होनी चाहिए। इस मकसद के लिए मशवरे और सिफारिशात फराहम करने के लिए पेशावर अफगानों का मुशावरती बोर्ड तैयार किया जाएगा। वियना में अफगान सिफारतखाने के जेर एहतमाम ऑस्ट्रिया के इदारे के तआवुन से 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज तालिबान मुखालिफ सियासत दान अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने 7 सितंबर को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया था कि तालिबान को तालिबान मुखालिफ सियासतदानों के इज्तम पर कोई तशवीश नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने तालिबान मुखालिफ सियासतदानों से कहा कि वो अफगानिस्तान वापस आ जाएं और काबुल में तालिबान के साथ किसी भी मामले पर बात करें। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के आगाज के बाद शुरका को 5 कमेटियों में तकसीम कर दिया गया। वियना कॉन्फ्रेंस में तालिबान मुखालिफ महाज के सरबराह अहमद मसूद भी 29 अफगान सियासतदानों में शामिल हैं। शिमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू अकलियती निचली जात दलित की 2 बहनों से ज्यादती के बाद उन्हें कत्ल करने और दरख्त से लटका देने के वाक़े से मुल्क भर में गम गुस्से और सदमे का इजहार किया जा रहा है। लखीमपुर खेरी जिले में 15 और 17 साल बहनों की लाशें बुध की शाम में एक दरख्त से लटकी हुई पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कियों से ज्यादती की गई और गला दबाकर उन्हें कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमान में से 2 के लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे और वो रजाकाराना तौर पर कुछ मुलजिमान के साथ मोटरसाइकिलों पर अपना गांव छोड़कर चली गईं। पुलिस ने बताया कि उन्हें गन्ने के खेत में ले जाया गया, जहां गला दबाकर कत्ल करने से पहले उनके साथ ज्यादती की गई। तमाम 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 2 ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस ने लड़कियों की लाशें उनके अहले खाना के हवाले कर दी, जिन्होंने जुमेरात को उन्हें गांव में दफन किया। दलित बहनों से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ मुश्तइल देहातियों ने करीबी मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। लड़कियों के खानदान ने हुकूमत से मुआवजे के तौर पर तकरीबन 1,25,000 डॉलर और सरकारी नौकरी का मुतालबा किया है। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मामले में मुजरिमों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है और लड़की के वालिद ने कहा है कि वो मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजा चाहते हैं। इंतहाई इम्तियाजी हिंदू दर्जा बंदी की तह में रहने वाले दलितों को मामूल के मुताबिक तासुब और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। चीन के आला तरीन ओहदेदार का वस्ती एशिया के दारुल हुकूमतों में इस हफ्ते शानदार इस्तकबाल हुआ। 28 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन के कलीदी कानून साजों के एक नेटवर्क का ख्याल है कि सदर शी जिनपिंग के लिए रवैया कुछ और होना चाहिए था। चीन पर इंट्रा पार्लियामेंट्री अलायंस या IPAC के जेर एहतमाम दूसरे सरबराही इजलास के अख्तिताम पर जारी एक मुश्तरका ऐलामिया में कहा गया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंसानी हकूक रिकॉर्ड मजीद खराब हो रहा है। हुकूमत अपने शहरियों के इजहार, सोच, जमीर और मजहबी आज़ादी से मुसलसल इनकार करती है, जबकि हुकूमत के मुखालिफीन के खिलाफ बड़े पैमाने की निगरानी, आर्जी हिरासत और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। बेजिंग ने अक्सर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके बढ़ते हुए आलमी असर रसूख के खिलाफ किसी भी दबाव के पसे पुश्त अमरीका कारफरमा होता है, लेकिन IPAC की रुकनियत पर एक सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि ग्रुप के 29 वफूद में बरतानिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन सबकी बेहतर नुमाइंदगी है। यांगून की एक अदालत ने म्यांमार की एक सहाफी को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है, जिसके बारे में एक वकील का कहना है कि ये सियासी बुनियाद पर दी गई सजा है। सहाफी हेतित टियन खियन बीबीसी मीडिया एक्शन के लिए काम करती थीं। अगस्त सन 2021 में उनकी गिरफ्तारी के बाद से उन्हें एनसीन जेल में रखा गया था। यांगून के डिस्ट्रिक्ट बाहान की एक अदालत ने खातून सहाफी को म्यांमार की पेनल कोड की शेख 505 के तहत इश्तियाल अंगेजी का मुजरिम करार दिया। उनकी सजा 3 साल कैद बामुशक्कत है। सहाफियों की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील जो इस केस से आगाह हैं, उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि प्रोसिक्यूटर ने सबूत फराहम नहीं किए और ये कि खियन को अनसीन जेल के एक वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जहां सजा याफ्ता मुजरिमों को रखा जाता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए मजीद 600 मिलियन डॉलर के हथियारों के पैकेज का ऐलान किया है। बाइडन ने सदारती ड्रॉ डाउन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, जो सदर को अमरीकी स्टॉक से इजाफी हथियारों की मुंतकली की इजाजत देता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की अवाम काबिल तहसीन हौसले और अज़्म के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। हम जो सलाहियतें फराहम कर रहे हैं, वो मैदान जंग में फ़र्क लाने और मुनासिब वक्त पर होने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन का हाथ मजबूत करने के लिए हैं। अमरीका ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से कीव हुकूमत को तकरीबन 15.1 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद भेजी है। अमरीका ने रूस के कुछ इदारों और अफराद पर जुमेरात को नई इकतसादी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका रूसी हुकूमत को यूक्रेन के खिलाफ जंग का जवाबदेह ठहराना जारी रखे हुए है। इन पाबंदियों के तहत इन ब्लैकलिस्ट किए जाने वालों के अमरीका में मौजूद हर किस्म के असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और अमरीकी अफाद या कंपनियों को उनके साथ कारोबार करने की ममानियत होगी। यूक्रेन के हुकाम ने जुमेरात को बताया कि शिमाल मशरकी यूक्रेन के इलाके ज़ियोम में 440 से ज्यादा लाशों पर मुश्तमिल एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई है। इस शहर से चंद रोज कबल रूसी अफवाज को बेदखल किया गया था। 440 लाशें एक ही जगह दफन की गई थीं। कुछ लोग तोपखाने की गोलाबारी से मरे और कुछ की मौत फजाई हमलों की वजह से हुई। सदर बाइडन ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में मुनक़दा एक सरबराही इजलास में सफेद फार्म बालादस्ती के खिलाफ आवाज उठाई और कौम पर जोर दिया कि वह अपनी जहरीली सियासी तकसीम पर काबू पाए। इजलास का मकसद पूरे अमरीका में तकसीम और नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुकाबला करना है। यूनाइटेड वी स्टैंड समिट में मकामी रहनुमाओं, शहरी हकूक की तंजीमों, माहरीन और कम्युनिटी ग्रुप्स इकट्ठे हुए। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह तकरीब इन कम्युनिटीज के एजाज में मुनक़िद की गई है जो नफरत पर मबनी तशद्दुद से गुजरी हैं। बाइडन के नकादों की दलील है कि बाइडन खुद तकसीम को हवा देते हैं, जब उन्होंने हालिया हफ्तों में मेगा रिपब्लिकन्स के खिलाफ सख्त नुक्ताचीनी की, जिसके नतीजे में सख्त सियासी बयानबाजी शुरू हुई। रिपब्लिकन सेनेटर टॉम कोटिन ने ट्वीट किया कि अगर वो अमरीका में तकसीम की असल वजह का पता चलाना चाहते हैं तो उन्हें अपना जायजा लेना चाहिए। सदर जो बाइडन और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा यूक्रेन में रूस की जंग, आबो हवा के मसाइल, तिजारत और मजीद मौजूदात पर व्हाइट हाउस में बातचीत के लिए तैयार हैं। बाइडन आज जुमे को रामाफोसा की मेजबानी कर रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा ममनून हैं। आप अपनी कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।